ರಾಮ
कृष्ण। तो आप सब नवयुवकों का स्वागत है कृष्ण भावनामृत संघ स्कान सूरत की ओर से। दुर्लभ मानव जन्म में छोटी उम्र में आपको कृष्ण भावना का संदेश प्राप्त हुआ है और भक्तों के संग से आप अपने जन्म को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ी भाग्य की बात है, नहीं तो बूढ़े लोग जिनको घर में जगह नहीं होती है वो मंदिरों में जाके भर्ती होते हैं। घर वाले निकाल दें वो मंदिरों में जाते हैं। भगवत गीता की शिक्षा अर्जुन को भगवान ने दी थी जो नौजवान था, बूढ़ों को इकट्ठा नहीं किया था, जवानों को शिक्षा दी थी। प्रहलाद महाराज छोटे से बच्चे 5-7 साल के स्कूल के इकट्ठे करके कथा और कृष्ण भक्ति सिखाया करते थे। तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, मूर्तिमान प्रभु और जो भी आपके भक्त साथी हैं जिन्होंने आपको ये प्रेरणा दी है कृष्ण भावना कृष्ण भक्ति की। आज एकादशी का दिन है, इसको माधव तिथि बोलते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी, जतन करी पालन करो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माधव तिथि, माधव का अर्थ होता है लक्ष्मीपति। माधव माँ लक्ष्मी को कहते हैं, धव कहते हैं पति को, लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है ये 3 दिन आज का एकादशी का। तो माधव तिथि क्या फायदा है इसका, भक्ति जननी, ये भक्ति को जन्म देती है, भक्ति करने में बहुत सहायता करती है। इसलिए यतन करी पालन करो, यतन करी का मतलब बड़े सावधानी से इसका पालन करना चाहिए। कैसे इसका पालन करें, वो तो बहुत से लोग हैं एकादशी के व्रत तो रख लेते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, कुछ प्रसाद खा लेते हैं एकादशी का फलाहार, वो तो ठीक है। लेकिन यतन करी पालन करने का उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करो और भगवान की कथा सुनो। इस बात का जतन करो कि अधिक समय भगवान की कथा और कीर्तन सुनने का आपको समय मिले। एकादशी के दिन 25 माला हम जप करते हैं, साधारण तो 16 करते हैं, एकादशी को 25 माला करते हैं। अब 25 माला सबने आप आज कर लिए, सबने नहीं किया तो रात को जाग के कर लेना। जो रात को देर तक जागता है वो भाग्यशाली है, एकादशी के दिन सोना भी नहीं चाहिए। चेतना महाप्रभु ने एक दिन तो कह दिया भक्तों को, क्या करते हो रात को सोकर, जिंदगी खराब होती है, आओ सारी रात कीर्तन करेंगे। तब से श्रीवास आंगन में रात सारी कीर्तन हुआ करता था और सूर्य उगता था तो उनको बहुत बुरा लगता था, अच्छा है रात का कीर्तन होता है, इस दिन हो गया फिर दुनिया में जाके काम करना पड़ेगा, कीर्तन अच्छा है। तो अधिक से अधिक समय एकादशी के दिन श्रवण और कीर्तन करना चाहिए क्योंकि भक्ति की जननी है एकादशी। अभी आप जो भजन गा रहे थे, ये भजन भगवान का पता है, एड्रेस है। अगर आपको भगवान के बारे में किसी को पता लगाना है तो कोई आदमी आपको मिलता है नया तो आप उससे पहले क्या पूछते हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, यही क्या करते हो, तीन प्रश्न पूछते हैं किसी का पता पूछना होता है, नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। भगवान के भक्त भगवान का परिचय देते हुए कहते हैं कृष्णा जिनका नाम है उनका नाम कृष्ण है, कहाँ रहते हैं, गोकुल जिनका धाम है, गोकुल में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो बहुत सारे कृष्ण वहाँ होंगे, हो सकता है 5-7-8 का कृष्ण नाम हो, फिर बोला यशोदा जिनकी मैया है इसलिए माता का नाम बता दियो बड़ी सावधानी से कि उनकी माता का नाम यशोदा है, उसको यशोदा नंदन बोलते हैं, यशोदा दुलाल बोलते हैं, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापई है, पिताजी का भी नाम बता दिया। आजकल सावधानी के लिए किसी का नाम और उसके बाप का नाम दो आदमी का एक जैसा हो सकता है, लेकिन माता का भी एक सभ्य कैसा हो ये संभव नहीं है। तो बड़ी सावधानी से पासपोर्ट में माता का नाम भी लिखते हैं, तो बड़ा फुल प्रूफ एड्रेस है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। माता का नाम भी बता दिया कि यशोदा उनकी माता है और नंद जी बापैया है, पिताजी नंद बाबा है। तो बड़ा आश्चर्य लगेगा, अरे कृष्ण का तो वसुदेव के घर में और देवकी के घर में पैदा हुए थे, फिर ये यशोदा का नाम कैसे ले लिया, ये तो बड़ा आश्चर्य, ऐसे कैसे बोल दिया। जो गोकुल के कृष्ण हैं वो नंद और यशोदा के बेटे हैं, मथुरा और द्वारका में रहने वाले कृष्ण वो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, दोनों में अंतर है। एक श्री कृष्ण का ऐश्वर्य का रूप है, ऐश्वर्य का रूप मतलब राजा जैसा रूप, वो द्वारकाधीश के रूप में है, वो मथुरापति के रूप में है, वहाँ उनका नाम वसुदेव कृष्ण है, वहाँ देवकी और वसुदेव के सुत के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में, गोकुल में और ब्रज में और नंदगांव में, बरसाने में उसको कोई देवकी नंदन कृष्ण नहीं जानता, उसको सब नंद नंदन जानते हैं और यशोदा नंदन के नाम से जानते हैं। तो जब गांव का नाम गोकुल बता दिया, द्वारका बता दिया होता तो वसुदेव और देवकी का नाम बताते, लेकिन बता दिया गोकुल में रहने वाला कृष्ण। असल में एक चौथाई हिस्सा ये भौतिक जगत है, तीन हिस्सा आध्यात्मिक जगत है। जैसे इस धरती के ऊपर एक हिस्सा धरती है, तीन हिस्सा पानी है, ऐसे एक हिस्सा ये संसार है भौतिक जगत और तीन हिस्सा आध्यात्मिक जगत। ये एक जगत नहीं, ये जगत तो सबसे छोटे से छोटा है, जिसमें हम रहते हैं ये छोटे का छोटे से छोटा जगत है, और ऐसे असंख्य जगत इससे बड़े तरबूज और खरबूज की तरह ब्रज नदी में लौट रहे, घूम रहे हैं। कितने खरबूज तरबूज नदी में बहते हुए देखो, ऐसे बहुत से लोग ऐसे उधर घूम रहे हैं। कोई गिनती करे कि कितने ऐसे लोग हैं भौतिक, तो एक आदमी बच्चा मुट्ठी में जितने राई पकड़ लेगी, राई के दाने होंगे, उससे ज्यादा लोग हैं। आध्यात्मिक लोक इससे ज्यादा बहुत बड़ा है। उस आध्यात्मिक लोक में पहले तो सीमा है, बाउंड्री है, नीचे ब्रह्मा जी का लोक है, ऊपर से ऊपर 14 भवन में ऊपर से ऊपर जो लोक है वो ब्रह्म लोक है, सत्य लोक कहते हैं, वहाँ भौतिक जगत समाप्त हो गया। फिर ब्रज नदी है, उस पार नदी के पहला लोक जो आएगा आध्यात्मिक, उसको सदाशिव का लोक कहते हैं, शिव लोक है सदाशिव, भगवान सदाशिव विष्णु का एक विस्तार है। कैलाश में रहने वाले शंकर जी, इसका थोड़ा सा तमोगुण से रिश्ता है, लेकिन सदाशिव जो है उसका लोक आध्यात्मिक जगत में, उससे ऊपर असंख्य वैकुंठ है जहाँ भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ रहते हैं। वैकुंठ लोक असंख्य हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत से वैकुंठ लोक हैं। जैसे इस अपने देश के अंदर कितने गांव हैं, वो सारों को कहेंगे क्या कहेंगे, इंडिया के गांव ही कहेंगे ना, पर जितने भी गांव हैं तो क्या क्या कहेंगे, इंडिया के गांव हैं, इंडियन विलेज है। तो ऐसे हमारे देश में नहीं तो भी मेरे ख्याल में कितने 75,000 के 1,00,000 से अधिक छोटे छोटे गांव हैं। जब एक देश में इतने गाँव हो सकते हैं तो फिर कितने वैकुंठ हो सकते हैं, उसमें कौन सी आपत्ति है, हो सकती है वैकुंठ, तो असंख्य वैकुंठ है। असंख्य वैकुंठ से ऊपर साकेत भगवान राम का धाम है अयोध्या, जहाँ राम के भक्त रहते हैं, और भी भगवान के अवतार जिनका नित्य धाम होता है, नरसिंह आदि का उनका अपना धाम है ऊपर। उससे ऊपर मथुरा है, जहाँ मथुरा के भगवान के भक्त रहते हैं, यादव अक्रूर आदि जो मथुरा में रहने वाले। उससे ऊपर द्वारका है, जहाँ के द्वारकावासी रहते हैं, और उसके ऊपर गोलोक वृंदावन है, उसके दो भाग हैं, एक भाग माधुर्य है जिसमें गोपियां भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा यशोदा ग्वाल बाल रहते हैं, और दूसरा औदार्य है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु और उसके परिकर रहते हैं, ये गोलोक धाम है ऊपर। तो यहाँ परिचय दिया जा रहा है कृष्ण का जो गोलोक में रहने वाला है, जिसके साथ नंद बाबा है और यशोदा मैया है। तो ऐसे ही बस पिता माता तो हैं, तो फिर कुछ तो बड़ा हुआ होगा जीवन में, किया होगा। हाँ, बोला राधा जिसकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। अब ये अद्भुत माया किसकी है? राधा उनकी शक्ति है। कहाँ राधा का उत्पत्ति कैसे हुआ, राधा प्रकट कैसे हुई, राधा कहाँ से आई? राधा स्त्री नहीं है, जैसे लड़कियाँ इस दुनिया में जन्म लेते हैं, ऐसे राधा का जन्म नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में बैठे हुए थे, रास स्थली का सुंदर सा आगे दृश्य था, बहुत सुंदर हरे भरे वृक्ष थे और फूल पत्तियाँ चारों ओर से सुगंधित हवा बह रही थी। भगवान श्री कृष्ण के मन में संकल्प आया कि आनंद विहार करना चाहिए, आनंद विहार करना चाहिए, तो अकेला तो नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण से वाम भाग से, भगवान के लेफ्ट साइड से एक बहुत सुंदर कन्या प्रकट हो गई, एक मूर्ति, महाबुद्ध मूर्ति प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण उस मूर्ति को देखा, जैसे देखा वो मुस्कुराने लगी और दौड़ती हुई गई और जाके फूल तोड़ा और लाके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण किया। दौड़ी इसलिए धावते बोलते हैं संस्कृत में, और लाके फूल भगवान की क्या की, पूजा की, तो नाम हो गया राधा, आराधना करने वाली, दौड़ के पूजा किया। तो राधा का प्रकट्य भगवान श्री कृष्ण के अंग से हुआ है, राधा कृष्ण से अलग नहीं है, राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक तनु है, राधा कृष्ण एक तनु है, एक ही शरीर है जिसके दो भाग हो गए हैं। इसलिए राधा और कृष्ण की लीलाओं को ऐसे समझना चाहिए जैसे आप जब शीशे में खड़े होते हैं आईने में ना, तो आप अपने आप से कैसे, आपको कोई अपने आप से लज्जा तो नहीं आती है, कुछ भी अपने आप से करते हैं आप शीशे के सामने खड़े होते हो ना रोज, स्त्रियाँ माता जी अपना श्रृंगार करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो अपना ही शक्ल देखते हो ना, तो उसमें कौन सी आपत्ति। तो राधा और कृष्ण मानो राधा रानी शीशा है जिसमें कृष्ण अपने आप को देख रहा है, तो उसमें कोई संसार की दृष्टि है ही नहीं, अपने आप को आप शीशे के अंदर, मैं संसार की दृष्टि से कह रहा हूँ भाई, नहाते हो कुछ भी शीशे में, आपको तो कुछ अपने आप से लज्जा तो आती नहीं, क्यों अपने आप ही और कोई है नहीं, और शीशा है उसमें अपने आप को देख रहे हो, तो जब अपने आप को कोई देखता है तो उसमें कोई संदेह है नहीं। तो कृष्ण और राधा कोई दो चीज़ें नहीं, वो कृष्ण से अलग निकली हुई कृष्ण की शक्ति है, जैसे वो एक दर्पण हो जिसमें, लेकिन दर्पण में उल्टा दिखता है आदमी, लेकिन राधा और कृष्ण ऐसा उल्टा नहीं है, सीधा है बिल्कुल। तो राधा उनकी अंतरंग शक्ति है, अद्भुत उनकी माया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण से पहले पहले बलराम जी पहला विस्तार निकलते हैं, और फिर बलराम जी से संकर्षण और तीन विष्णु भी बलराम से प्रकट होते हैं, कारुण दक्षाय, गर्भोदक्षाय और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और ये तीनों विष्णु इस भौतिक जगत के लिए हैं, इस जगत की सृष्टि के लिए तीनों विष्णु की जरूरत है। आध्यात्मिक जगत में तो नारायण है, लेकिन इस जगत को जितने अवतार संसार में आते हैं वो प्रायः क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं, अवतार सारे क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं, इसलिए क्षीर सागर के पास जाके प्रार्थना करते हैं सब लोग। तो अवतार सब क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं, जितने भी अवतार होते हैं, केवल श्री कृष्ण साक्षात जब आते हैं तो सारे अवतार श्री कृष्ण के अंदर समा जाते हैं, प्रवेश कर लेते हैं, उसको कहते हैं पूर्णतम अवतार, जिसमें सारे और अवतार समाये हुए हों, जिस भी अवतार का काम लेना हो वो उसमें से ले सकता हूँ। तो जैसे सारे अवतार भगवान से निकलते हैं, ऐसे राधा रानी से विस्तार होता है। गोपियां वृंदावन की सारी राधा रानी का विस्तार है, लक्ष्मियां वैकुंठ में हैं जितनी सारी वो राधा रानी का विस्तार है, और द्वारका की भगवान की रानियां जो है वो भी राधा रानी का विस्तार है, और राधा रानी की छाया रूप संसार में दुर्गा है जो इस संसार का संचालन करती। आध्यात्मिक जगत का संचालन भगवान की योग माया करती है, भौतिक जगत का संचालन भगवान की महामाया करती। लेकिन भगवान की महामाया और योग माया में भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। जैसे इंजीनियर के लिए बिजली में से कूलर चलाए, एसी चलाए या हीटर चलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए बिजली बिजली है। तो भगवान के लिए दोनों शक्तियां समान हैं, लेकिन अंतरंग शक्ति भगवान की अहलादिनी शक्ति के रूप में राधा रानी आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है और भगवान श्री कृष्ण को आनंद देती है, और तीसरा काम करती है भगवान के भक्तों का पोषण करती है, भगवान के भक्तों का देखभाल करती है। इसलिए हम हरे शब्द में राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि हमारे को आप हमारी देखभाल कीजिए, हम संसार में दुखी हैं, अनाथ हैं, आप हमको सनाथ कीजिए, हमारे को भगवान जगन्नाथ के चरणों में स्थान दीजिए, उनकी सेवा में हमको लगाइए। तो ये भाव इसलिए है। तो यहाँ कृष्ण का जो परिचय है वो राधा रानी के साथ कृष्ण का परिचय है। बहुत से लोग कई बार ये प्रश्न करते, सब जगह राधा कृष्ण के मंदिर हैं, शादी तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ की थी। हाँ, रुक्मणी द्वारकाधीश के भी मंदिर हैं, लेकिन राधा कृष्ण का माधुर्य भाव है, राधा कृष्ण का जो भाव है वो प्रेम का भाव है, बहुत अति गाढ़ भाव है। श्री कृष्ण भगवान ने एक बार रुक्मणी को सिर्फ कह दिया था, बच्चे हो गए, पोते हो गए, बेटे हुए, पोते हुए, पोतों के भी बेटे हो गए, तब एक दिन कितने हो गए ये तो। एक बार नारद जी गए, नारद जी ने कहा आपके पास रजिस्टर है आपके सारे बच्चों का, आपको मालूम है अनिरुद्ध कहाँ है? अरे अनिरुद्ध कहाँ गया, कहाँ गया? अरे कितने सारे, कहाँ से गिनती करेगा, तो बहुत सारे थे दे। एक रानी 16,108 रानियां और हर एक से 10 पुत्र और एक पुत्री, अब गिनती करते करते आदमी थक जाए। कभी कभी हास्य भाव से कहते, सुधामा जब भगवान के पास गए तो रुक्मणी तक तो चरण धुलाने में भगवान की सहायता की, बाकी रानियों कहे कहाँ के हम यह आशीर्वाद लेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये सब रानियां खड़ी हैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, पूजा करेंगी, एक एक पेड़ा लाइए आपको अर्पण करेंगी। एक दो तीन आई तब तब तो कहा आशीर्वाद हो आपको, सौभाग्यवती पुत्रवती भव, पत्रह 20 के बाद गला सूखने लगा, अब कितना पेड़ा खाएगा महाराज। तब पूछा और कितनी है, बोला पता नहीं, देखो तो बार बाहर देखा तो वो 116,108 की। अब सुधामा बाबा बोलते इतने पेड़े कैसे खाए, भगवान खा सकता है? तब सुधामा का गला सूख गया, भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, आप मेरे को आशीर्वाद देगो इन सबको मिल जाएगी। बोला हाँ ये ठीक है, आपको आशीर्वाद देता हूँ सबको मिल जाएगी, बहुत आसान सा काम। तो रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन कह दिया आपने मुझसे विवाह क्यों कर लिया, मैं तो राजा बन नहीं सकता, हमारे यदुवंशियों में हमको शराब, आप किसी अब शिशुपाल के साथ किसी और के साथ शादी करके सुखी रह जाती, अभी भी आपको आगे आ जा सकती हो। रुक्मणी मूर्छित होकर गिर गई। भगवान ने दो हाथ और निकाले अपने चार हाथ, वृंदावन में कहीं कृष्ण चार हाथ में नहीं निकले, मथुरा में और द्वारका में चतुर्भुज रूप में कई बार दिखे, कुरुक्षेत्र में चतुर्भुज रूप में दिखे हैं, भीष्म पितामह चतुर्भुज रूप की प्रार्थना कर रहा है, तमाल वर्णम चतुर्भुजम, चार भुजों वाला देखना चाहते हैं। तो भगवान दो हाथों से तो रुक्मणी को संभाला, एक हाथ से पंखा किया बाल संवारे, रुक्मणी को थोड़ा सा वापस चेतना आई। हाँ बोला भैया गए तो मजाक कर रहा था, तो इतना तो घर में गृहस्थी में मजाक होता है, आप इतना तो केवल वाक का व्योग रुक्मणी सह नहीं सकी, लेकिन राधा और गोपियां शरीर का व्योग 100 साल तक सह लिया। 100 साल तक अलग हो गए थे राधा कृष्ण और गोपियां, लेकिन उसको सह सकती थी, जो जुदाई को सह सकता है वो ऊंच कोटि का भक्त है। वो तो केवल जवान की जुदाई रुक्मणी सह नहीं सकी, अभी गुजरात में तो भगवान को अकेला खड़ा किया, यहाँ रणछोड़ राय को खड़ा किया तो भी रुक्मणी को साथ में नहीं, द्वारकाधीश को रुक्मणी को तो साथ में दूर खड़ा कर दिया, ये पता नहीं यहाँ भगवान, इसलिए अकेला अकेला भगवान यहाँ खड़ा होता है, अकेला कहीं होता नहीं है भगवान, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। भगवान के साथ में भगवान के परम भक्त को होना चाहिए, तो सबसे उत्तम भक्त भक्ति की जो परिकाष्ठा है, जो जो घनीभूत भक्ति का स्वरूप है वो राधा रानी है, तो भगवान के साथ भगवान की घनीभूत भक्ति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण के साथ जब पूर्ण भक्ति को जोड़ोगे तब चैतन्य महाप्रभु बनेंगे। तो कृष्ण प्लस भक्ति नैपुण्य, परिपूर्ण भक्ति जब कृष्ण में जुड़ेगी तब चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण जो अलग हुए थे गोलोक में, वो फिर एक बार मिलके एक हो गए। तो ये विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का परिचय है कि उसके अंदर राधा कृष्ण दोनों एक ही जगह पे हैं। और कलयुग के मूर्ख लोग हैं जो समझ नहीं पाएंगे राधा तत्व को, वैसे चैतन्य महाप्रभु को समझना सरल है। गोपियाँ कहती थी कि हम कहाँ कृष्ण के साथ वन में जा नहीं सकती हैं, घर से बाहर जाना तो स्त्री के लिए ठीक नहीं है, अब क्या करें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो गोपियाँ भी थी वो भी उनके साथ कहीं भी जा सकती थी, तो सब पुरुष ही थे, तो उनको जो 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 लीला में भाग लेने का मौका नहीं मिला था कृष्ण लीला में, उन सबको चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेने का मौका मिला। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला को औदार्य लीला कहते हैं, बहुत उदार है भगवान, सबको सबको अपने सेवा का आपके प्रेम का मौका दे दी सबको। तो बात कर रहे थे राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, अद्भुत उनकी ये माया है कि वो त्रिलोकी नाथ हैं लेकिन गोकुल के अंदर जब आते हैं तो छोटे बच्चे की तरह अपने आप को भगवान न मानकर साधारण बालक मान लेते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं। नंद बाबा बोलता है कि मेरे लिए मेरे खड़ाऊ उठा के आओ तो सर के ऊपर उठा के लेके आते हैं। गोपियाँ कहती हैं जरा नाच के दिखाओ तुम्हारे को छाछ पिलाएंगे, तो नाच के दिखा देते हैं। तो ये भगवान की अद्भुत माया है कि जो योगियों को ध्यान करने से थोड़ी देर के लिए उनकी दिल में आते नहीं हैं, झांकी भर नहीं योगी देख सकते हैं, उस भगवान को गोपियाँ चलू भर छाछ के ऊपर नाच नचा रही। ये भगवान की बहुत अद्भुत माया है। राधा के संग जब वो आते हैं तो अपने भगवत तत्व को भूल जाते हैं। द्वारकाधीश के मंदिर में जाओगे तो दूर खड़े होगे, अंदर जा नहीं सकते, तो लक्ष्मी जी खड़ी है। तो अभी भी जगन्नाथपुरी में तो जब भगवान जगन्नाथ चले जाते हैं रथ यात्रा में, 7 दिन वापस नहीं आते हैं, तो 5वें दिन पे लक्ष्मी जी डंडा लेके बाहर आती है, कहाँ गया अभी तक आया नहीं, और पकड़ के भगवान जगन्नाथ के सेवकों को कूटती है, मारती है, पकड़ के लाती हैं। मालूम है जगन्नाथ रथ यात्रा में 5वें लक्ष्मी अंदर से आती है, और एक उनका स्पेशल दिन है वीरा पंचमी का दिन उसको बोलते हैं मेरे ख्याल में ऐसे, वो तो लक्ष्मी जी उस दिन अंदर से आएगी। बोला कहाँ चला गया, किसने कहा उसको जाओ, अरे जाना था तो अपने भाई को बहन को साथ लेके गया, उधर गया है वो राजा रानी के पास वृंदावन चला गया है, वो पकड़ के उसके सारे जगन्नाथ के सेवकों को पकड़ के मारती है, और जगन्नाथ जी फिर शांत करके छोड़ाते हैं अपने वापस चलो। तो लेकिन राधा रानी तो इतनी उधार है, वो सबको कहती है कि श्री कृष्ण मुझसे ज़्यादा तुमसे ये भक्त प्रेम करते हैं, ये एक और कहीं दुनिया में नहीं मिलता है सवाए ब्रज के, कि एक भक्त दूसरे को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, अपने को छोटा करके दूसरे को बोलता है ये मुझसे बड़ा है, ये आपका कृष्ण सेवा अच्छी कर सकता है। तो ये वृंदावन का भाव है विशेष रूप से, राधा जिनकी जाया है अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री भगवान को बारम्बार प्रणाम है। अरे भाई क्या करता है वो, काम क्या करता है, लूट लूट दधी माखन खायो ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, काम क्या करता है, लूट के माखन खाता है। अरे माखन खाता है, उसके बाप के घर 9 लाख गाय है तो फिर लूट के क्यों खाता है। बोला मजा आता है लूटने में। एक बार यशोदा को गोपियों ने आके शिकायत कर दी कि तेरा लाला हमारे घर में माखन खाने आता है, तो यशोदा ने कहा कि मेरा लाला है कितने साल का, 3 साल का तो है, कितना खाएगा, तो दे दिया करो ना। तो एक दिन गोपियों ने कृष्ण को कहा आओ आओ कुछ माखन खा लो, बोला क्योंकि मैं भीख मंगा हूँ कि तुम्हारे घर का माखन खाऊँ, कि मेरे घर में नहीं है क्या। बोला फिर चोरी करके क्यों खाते हैं? बोला उसमें मजा आता है, चोरी करके खाने में मजा आता है। एक बार एक पुलिस ऑफिसर ने हमको बताया था कि आदिवासी लोग रहते हैं, लोगों को लूटते हैं, तो स्कूटर पे जाते वाले लोगों को खड़ा कर हो जाते हैं आदिवासी, तो बेचारा डर के मारे घड़ी भी दे देता है, पर्स भी दे देता है, फिर भी उसको दो तार लाठी मारते हैं। तो हमने जब उसको पकड़ा आदिवासी, हमने बोला जब ये सब कुछ पैसा वैसा दे दिया फिर इसको लाठी क्यों मारते हो? बोला मेहनत करके खाएंगे, मुफ्त का थोड़ी खाएंगे। भाई थोड़ी मेहनत तो करें, मुफ्त का थोड़ी खाना है। तो कृष्ण कहता हमें मुफ्त का नहीं चाहिए, मेहनत करके खाएंगे, कूदेंगे, अंदर जाएंगे, चीके को तोड़ेंगे तब खाएंगे, ऐसे मुफ्त का नहीं खाते। लेकिन माखन केवल कृष्ण ने ब्रजवासियों का खाया, और कहीं मक्खन की चोरी नहीं की, और कहीं मथुरा में गोकुल में, मथुरा में या द्वारका में मक्खन का नाम भी नहीं आएगा, न बांसुरी न माखन, ये सुनेगा भी नहीं जाएगा। वहाँ तो गोपियाँ प्रेम से माखन बना के कृष्ण को जाके बोलती थी हमारे घर में माखन खाने आओ, जब आता था तब बोलती तुम चोर हो मेरे घर में आए हो। ये गोपियों और कृष्ण का प्रेम था, इसलिए गोपियों के पास ही कृष्ण को माखन चुराने गए। आप लोग आए कि सूरत में कहीं माखन चुराने आया क्या कृष्ण? वो अमूल का माखन पुराना थोड़ी खाएगा, नमक वाला, उसको ताज़ा माखन चाहिए, अभी अभी का बना हुआ। सुबह 4 बजे बने और 5:30 बजे चोरी करे, आधे घंटे से ज़्यादा खराब होएगा, उस माखन को बंदर को खिलाता था। एक बार गोपियों ने आके कहा यशोदा को, देखो देखो तुम्हारा बेटा हमारे को बोलता है अयोध्या से बहुत सारे मेहमान आए, कुछ माखन छाछ दही दे दो। हमने मटकियाँ भर के दी, हमने जाके देखा बंदरों को खिला रहा। हमने बोला ये क्या? बोला यही तो आए हैं अयोध्या से मेहमान हमारे, तो यही तो वो हैं जो रामचंद्र के साथ गए थे, तब तो तनख्वाह भी नहीं मिली थी, अब माखन तो खाने दो बेचारों को। तो ये अयोध्या के मेहमानों को सेवा करता है विशेष रूप से कृष्ण बैठ के। तो लूट लूट दधि मक्खन खायो, ग्वाल सांबाल संग धेनु चराए। माखन खाता था, गाय का था ना, तो गायों को चराता था भी, और गाय चराने जाता था तो जूती कभी नहीं पहनी। एक बार यशोदा माँ ने बहुत सुंदर दो जूती की जोड़ी, एक जूती की जोड़ी बनाई, बोला कृष्ण जूती पहन के जाओ। बोला हाँ माँ लाओ, लेकिन 9,18,00,000 चाहिए जूते। बोला क्यों? बोला गाय कैसे, गाय पहनेगी तो नहीं, 9,00,000 गाय हैं सबको जूता चाहिए। वहाँ का जूते गाय के लिए जूते कहाँ से? बोला गाय के लिए जूते नहीं तो भाई मैंने भी नहीं पहनूंगा, मैं भी नहीं पहनूंगा। कृष्ण 11 साल से अधिक रहे वृंदावन में, कभी जूता नहीं पहना, पहना ही नहीं जूता। तो वो ग्वायों की सेवा करते थे, नाम ही उनका गोपाल पड़ गया, गोविंद और गोपाल गायों की सेवा से हो गया। पहले भगवान ने गायों से सेवा कराई, फिर गायों की सेवा की। जब पूतना कृष्ण को लेके गई और पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया, तो गोपियों ने कृष्ण को पूतना की छाती से उतारा और गाय की पूछ से मंत्र पढ़ के कृष्ण की रक्षा की। फिर गाय के गोबर के टीके लगाए शरीर के ऊपर, केशवाय नमः तो तुम्हारी सर की रक्षा करे, माधवाय नमः तुम्हारी छाती की रक्षा करे। ये जो हम तिलक लगाते हैं ना, ये शरीर की रक्षा होती है, ये कवच है। तो ऐसे गोपियों, पहले तो गायों ने कृष्ण की सेवा की और फिर कृष्ण ने गायों की सेवा की, बड़ा प्रेम से गायों को चराने के लिए जाते थे। और हम तो माला है ना आपके हाथ में, माला जपते हैं आप, हरे कृष्णा जपते हैं, कृष्ण के पास हीरे मोतियों की माला हुआ करती थी, लेकिन वो राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं जपता था, उसके ऊपर गायों के नाम जपता था। एक एक गाय को बुलाता था, गोरी गोरी कहाँ है, धौली धौली कहाँ है। वो गाय बड़ी बड़ी होशियार थी, आती नहीं थी, छुप के खड़ी होती थी, तो याद देखता था, अरे एक नहीं आई, ये तो तीसरे नंबर वाली नहीं, उसको अरे नहीं, उसको बुलाते तब वो भागती हुई आती थी। तो जब वापस आते थे शाम को तो अपनी माला के ऊपर गायों को गिनते थे कि ये एक एक युद्ध गायों का आ गया कि नहीं आया, गोरी आ गई सारी, धौली आ गई, हाँ, और क्या, गायों के बहुत सुंदर सुंदर नाम थे, कबली, हाँ, तो ये सब के नाम थे, उनको बुलाया करते थे। तो काम क्या किया? बोला दही मक्खन लूट के खाया, ग्वाल बालों के संग धेनु चराए। कोई काम का काम भी किया या यही किया? गज को ग्रह से पंद छुड़ायो, द्रुपद सुता को लाज बचायो। बोले ये तो कर रहा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो द्रुपद की बेटी द्रुपदी भी साधारण स्त्री नहीं है, यज्ञ के कुंड से पैदा हुई है, किसी अयोनिज है, उसको योनि से पैदा नहीं हुई, स्त्री पुरुष से पैदा नहीं हुई है। जैसे सीता है, सीत कहते हैं हल के नीचे के हिस्से को, सीत कहते हैं जो जमीन में खोदता है, उस हल के सीत से निकली थी तो उसका नाम सीता हुआ। ऐसे यज्ञ के कुंड से निकली थी तो यज्ञ का भी बोलते हैं, और इसको कृष्णा भी बोलते हैं, और इसका नाम द्रौपदी भी है, और भगवान श्री कृष्ण उसको अपनी सखी मानते थे, बहुत उनसे प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी द्रौपदी, तो द्रौपदी का कौरव सभा के अंदर जब कोई पांच पतियों में सहायता न कर सका, राजा सहायता न कर सका, भीष्म पिताव आदि महावीर सहायता न कर सके, गुरु द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मण से नहीं रक्षा कर पाए, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। बोला वो तो ठीक है इंसानों की, बाकी दुनिया बोला इंसान क्या, हाथी जैसा जड़ गजेंद्र जब ग्रह से ने उसका पकड़ लिया था पांव त्रिकूट पर्वत की तलहटी में, उस वक्त केवल गोविंद उच्चारने के लिए गो शब्द का उच्चारण किया था, गज ने वंद कहने से पहले भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए और गज का ग्रह से फंद छुड़ाए। पहले तो मगरमच्छ को चक्कर से गर्दन काट दिया, तो हाथी का पांव तो निकला, लेकिन उससे पहले वो मगरमच्छ के अंदर से एक बहुत दिव्य गंधर्व निकला, हु। गजेंद्र ने बोला प्रार्थना मैंने की, बुलाया दावत मैंने दी, और मेरे से पहले जा वो रहा है ऊपर, इनविटेशन मेरी और माल वो खा। वह तरका ये हु नाम का गंधर्व था, श्राप के कारण मगरमच्छ बना था, और तब जो हाथी बना था इंद्रद्युम्न महाराज अगस्त ऋषि के श्राप के कारण उसका उद्धार भगवान ने किया। अब तो कहा कि कहाँ मिलेंगे ऐसे बड़े दयालु हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हाथी जैसे जड़ का भी उद्धार कर सकते हैं, कहाँ मिलेंगे। तब कहते हैं कुरुक्षेत्र को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, कहाँ मिलेंगे। बोला गीता में मिलेंगे, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और गीता के अंदर आज भी वो कृष्ण आप सबको मिलने के लिए तैयार है। इसलिए ठीक तरह से गीता को समझोगे तो रोज कृष्ण के साथ आपकी मुलाकात होती रहती, आपका मिलन होता रहेगा। तो कृष्ण कहाँ मिलेंगे, जो कृष्ण है वो कहाँ मिलेंगे। बोला अब तो गीता के पन्नों में मिलेंगे और भागवत के अंदर कृष्ण आपको मिलेंगे। तो गीता भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है, भगवान के वचन और भगवान अलग नहीं है, और भगवान की महिमा और भगवान अलग नहीं है। तो भागवत और भगवान श्री कृष्ण समान है, और गीता और भगवान श्री कृष्ण समान है। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार हमारी कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था भगवद गीता के ऊपर आधारित है, जो शास्त्र प्रमाणित है, ऐतिहासिक भी है, और विश्व सारा इसको मानता भी है और जानता भी। ये भगवद गीता के आमुख में, प्रीफेस में, पहले पेज पे प्रभुपाद ने लिखा है कि हमारी संस्था भगवद गीता के ऊपर आधारित है, जो प्रमाणिक शास्त्र है। तो आप कभी भगवद गीता का जो आमुख है, प्रीफेस है, उसका पहले पेज के दूसरी पेरा में पहली लाइन ये लिखी हुई है। तो हमारी संस्था का आधार भगवद गीता है, इसलिए हमारे जीवन का आधार भगवद गीता होनी चाहिए। आप सब नौजवान हैं, दो चार को छोड़ के सब 25 साल से छोटी उम्र के हैं, आप लोगों को 700 श्लोक गीता के याद कर लेने चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, उम्र भी है, और कर भी सकते हो। करना क्या पड़ेगा, रोज का 10-15 मिनट में एक अध्याय दो अध्याय का पाठ करने का अभ्यास करो, रोज बैठ के पाठ करने का अभ्यास करो, अपने आप याद हो जाएगा, कुछ अलग याद करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर ठीक तरह से थोड़े पढ़ना आता है आपको भाषा, तो रोज के 6 अध्याय पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, श्लोक 6 अध्याय पढ़ोगे तो आधे घंटे में हो जाएंगे, और 6 महीने के बाद 20 मिनट में हो जाएंगे। तो अगर 4 हम तो 3 अध्याय एक रोज पढ़ो तो 6 दिन में गीता पूरी हो जाएगी, और 5 बार महीने में गीता पूरी हो जाएगी, 60 बार साल में पूरी हो जाएगी। तब तक आपको गीता के श्लोक आपकी जबान पे आ जाएंगे, पूरा याद नहीं होगा लेकिन जबान पे आ जाएगा, इसका अभ्यास करो। नौजवान हो पहले इसको ऐसे ही पढ़ जाओ, और फिर इसके एक एक शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए अपनी भाषा में, तब आप समझ लो कि आप भगवान श्री कृष्ण के, श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के सैनिक हो, और हर सैनिक के पास अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। जाएगा संसार में लड़ाई करने के लिए और साथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होगा तो मारा जाएगा। हमारी भक्ति में आने का मतलब माया से लड़ाई शुरू है, जैसे आप भक्ति में आता है माया से लड़ाई शुरू हो जाती, और माया से लड़ाई हमारी चालू हो जाती है तो हमारे अस्त्र शस्त्र हमारे शास्त्र हैं और हमारा भगवान के नाम का जप है। इसलिए जब भी मुख में भगवद्गीता का श्लोक आया, इसका मतलब आपको कृष्ण की याद आ गई। तो कृष्ण की स्मृति के लिए आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए भगवद्गीता आपको याद हो जाए। केवल भगवद्गीता याद करने से आदमी भक्त नहीं बनता है, लेकिन आप भक्त हो इसलिए भगवद्गीता याद कर लो तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। भगवद्गीता याद है वो भक्त हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन भक्त को भगवद्गीता याद हो ये जरूरी है। तो आप लोग एक ये अभ्यास करो कि एक साल के अंदर आप टारगेट बनाओ कि इतने कम से कम लिम कुछ विशेष अध्याय निकाल लो कि ये याद कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे नहीं कर सकते तो जो जो विशेष श्लोक चुने हुए हैं, जो श्लोक का अलग पुस्तक निकला हुआ है भगवद्गीता के हर एक अध्याय के कुछ श्लोक, उसका आप 3 दिन में पाठ भगवद्गीता का कर लो रोज़। वो इतने ही हैं जो 15-20 मिनट में हो जाएगा रोज़ का, तो उतने श्लोक याद हो जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल ठीक तरह मेहनत करना चाहते हैं सही माना में, तो आप भगवद्गीता का पहले 12वें अध्याय का पाठ रोज़ करना शुरू करो, 15वें अध्याय का करो, छोटे 20 श्लोक अध्याय के हैं, ये आपको 1 महीने में याद हो जाएंगे दोनों अध्याय। फिर 9 का शुरू कर दो, ऐसे एक आपकी इच्छा के अनुसार है, 4 का शुरू कर दो। तो आस्ते आस्ते ऐसे करके भगवद्गीता आपको याद करनी चाहिए। प्रचार के लिए ये आपका बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र है, और आप से यही आशा प्रभुपाद जी वैष्णव गुरुजन और चैतन्य महाप्रभु रखता है कि आप इस देश में और देश से बाहर जगह जगह प्रचार का कार्य करो। दुनिया में बहुत से लोग नौकरी धंधा करते हैं, कोई कभी गाड़ी चलाने का धंधा करता है, कोई दुकान चलाने का धंधा करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टरी करता है, एक और भी प्रोफेशन है जिसका नाम है प्रचार करना। इसके लिए दुनिया को मैं किसी को पता नहीं है, ये सबसे भगवान को प्रिय प्रोफेशन है, ये वो काम है जो भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान कहते हैं मेरी भगवद्गीता का जो प्रचार करता है उससे ज़्यादा न कोई मुझे प्रिय है, न था और न होगा। तो ये सबसे ऊंचे कोटि का प्रोफेशन है, सबसे अच्छा कार्य है संसार में, भगवान की शिक्षा भगवद्गीता को ठीक तरह से अध्ययन करके और चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश को पूरा करना है। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, भारत भूमि ते हैला जन्म जात। अगर आप भारत में आपका जन्म मिला है तो आप बड़े भाग्यशाली हो, ये पुण्य भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, यहाँ भगवद्गीता भगवान ने इस धरती के ऊपर दिया है, तो आप भाग्यशाली हो कि आपको भारत में जन्म मिला है। कहीं अफ्रीका में मिला होता और गधा को तक खाने को मिला होता तो आपका दिमाग भी गधे जैसा होता। हाँ, उधर लोग रहते हैं, खाते हैं, देखा क्या खाते हैं, जो आया वो खाते हैं, आदमी लगते नहीं है, पशु जैसे लगते हैं। और कहीं को बहुत सुंदर हो जाते तो फिर संसार के भोग में पड़े रहते। भारत का व्यक्ति न ज़्यादा सुंदर है न ज़्यादा कुरूप है, बीच बीच में है, भगवान की भक्ति कर सकता है, बहुत सुंदर भोग में फंसे हुए सारे। पाश्चात्य देश जाके गोरे लगते हैं लेकिन अंदर के बहुत काले हैं। हमारा बाहर से थोड़ा सा काला लगता है लेकिन अंदर बहुत उजला हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत सहज हो सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु का ये आदर्श है, जन्म सार्थक करो। जन्म सार्थक कैसे करो, भगवद्गीता भागवत को समझ लो। आप एक भगवद्गीता को ठीक तरह समझ लो और फिर कर पर उपकार, जाके दूसरे लोगों का उद्धार करो। तो ये प्रचार का कार्य आपको करना है, ये सबसे बड़ा प्रोफेशन है। आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमारा अनुभव ये है कि दुनिया में लोग परेशान हैं, महंगाई हो गई है। किसी ने मुझे कहा दाल 80 रुपया किलो है, सच है क्या? हमको तो आज तक पता नहीं है 20 साल से दाल का रेट क्या है, सच बोलते हैं। हमको अभी भी वो याद है जब हम भक्त नहीं बने थे और बाज़ार से लाते थे 8-9 रुपया किलो, वही याद है। उसके बाद आज तक हमको आलू का क्या रेट है, टमाटर का क्या रेट है, चावल का क्या रेट है, हमको याद नहीं है। अपने आप जहाँ जाते हैं खाने को मिलता है तो रेट काहे के लिए पूछ रहे हैं। तो ये ऐसा काम है जिसके अंदर दुनिया क्या उल्टी हो या सीधी हो, लेकिन आपका सब काम सीधा हो। ऐसी कौन सी दुनिया की एक गाड़ी नहीं है जिसके अंदर हमको चढ़ने को नहीं मिलता है। कभी मारुति के जाल के अंदर कोई ले जाता है तो कभी हुंडा में लेके जाता है, रोज़ नई गाड़ी मिलती है। लोग जैसे कि सेठ के पास भी रोज़ नई गाड़ी नहीं होती है, रोज़ नई गाड़ी में चढ़ते हैं, रोज़ नई गाड़ी भाई, सुबह एक दोपहर दूसरी शाम को तीसरी। ये तो रईस के बेटे के पास भी इतना माल नहीं है और हमारा रोज़ का ये नेम है, सुबह एक शाम को दूसरी, अपने आप ले जा। तेल डलवाने की ज़रूरत नहीं, कभी जेब में कुछ भी नहीं होता, देखो कुछ भी नहीं है। ये ऐसा प्रोफेशन है, तनख्वाह भी नहीं मिलती है और खर्चा भी नहीं होता है। लेकिन काम अपने आप होता है, कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता है। साल में केवल भ्रमण के ऊपर 3-4 लाख रुपए का खर्चा होता है टिकटों का, लेकिन हमको मालूम नहीं है कैसे होता है, अपने आप होता है और हो जाता है। ऐसा बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, कुछ भी चिंता करनी नहीं है, केवल चिंतन करना है कृष्ण का और भगवद गीता याद करनी है। फिर अपने आप आपको ले जाएंगे लोग, छोड़ के जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। कुछ बाजार उल्टी हो सीधी हो आपका कोई मतलब नहीं, उससे आपका सब काम अपने आप सीधा रहेगा। तो ये एक विशेष प्रोफेशन है, ये है कृष्ण भक्ति का विशेष प्रोफेशन। प्रोफेशन का अर्थ है पूर्ण रूप से आदमी एक काम में समर्पित होना। प्रोफेशन का मतलब धंधा नहीं है, प्रोफेशन का मतलब आदमी अपने आप को पूर्ण रूप से किसी काम में समर्पित कर दे। तो आप में से कोई भाग्यशाली 10 भी ऐसे बच्चे निकले हैं जो ठीक तरह गीता को समझ के और इसका प्रचार करें, तो पूरी गुजरात के अंदर तो हम कृष्ण भावना को आने वाले 50 साल में पहुंचा सकते हैं। केवल 10 भी निकले तो बहुत, भगवान प्रभुपाद ने तो कहा केवल 5 मिले तो हम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना दें, प्रभुपाद ने तो ऐसे कहा था, केवल 5 मिले तो पूरी दुनिया के अंदर हम इसका प्रचार कर सकते हैं। तो 10 आप में से कम नौजवान इस काम को जीवन में संभालो कि हमें भगवद गीता का प्रचार करना है, कृष्ण भावना अमृत में प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार और प्रभुपाद के भक्तों के संग में रहकर हम यही कार्य करेंगे। और आपको कहीं कभी जीवन में हमारे को 30 साल के अनुभव से हम बता रहे हैं कि कहीं किसी चीज़ की कोई परेशानी कमी नहीं आएगी, भगवान कभी भी आपको संकट में जाने देंगे नहीं। अगर संकट देंगे, तकलीफ दी भगवान ने कभी आपको, तो वो भी आपकी महिमा बढ़ाने के लिए देंगे, कष्ट देने के लिए नहीं देंगे। उस तकलीफ के बाद लोग आपका बहुत ज़्यादा कथा को सुनने के लिए आएंगे, ज़्यादा आपके प्रचार को स्वीकार करेंगे। इसलिए इस प्रकार से अपने जीवन में कुछ लोग कृष्ण भक्ति को ही जीवन का लक्ष्य बना के और भगवद गीता पूरी को याद करो, और नौजवान हो छोटे हो अभी फिर भागवत को अच्छी तरह से पढ़ो। एक तो सब नकली भागवत कथाकार दुनिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उल्टा चला रहे हैं दुनिया को भागवत के नाम में। आप ठीक तरह से भागवत को समझो और जाके भागवत का प्रचार करो। हमारा भागवत धर्म है, भागवत और भगवद गीता का प्रचार हमारा विशेष कार्य है, और कुछ लोग निकल के इसकी शिक्षा ग्रहण करो और यही कार्य करो। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? 44 मिनट हुए हैं, 1.25 घंटा हो गया। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न?
प्रचार
ही सार सड़ गया है, नहीं सार है, प्रचार ही सार है। सार कहते जैसे गाय के अंदर दूध सार है, गाय में दूध नहीं है तो क्या करेंगे। तो ऐसे जीवन में प्रचार ही सार है। आपका जीवन है तो प्रचार करो, नहीं तो मुर्दे के बराबर हो। वैसे कहीं कहीं ऐसा लिखा है, प्रीचिंग इज लाइफ, प्रचार ही जीवन है। प्रचार नहीं कर रहे हो तो खा पी रहे हो, तो पशु की तरह जल, इंसान नहीं हो, चार हाथ पांव बन कठे करके पशु की तरह खाओ पियो मौज करो। प्रचार ही सार है का मतलब है, जीवन मिला है मानव तो प्रचार करो। रोज कम से कम 10 आदमी को कृष्ण का उपदेश सुनाओ, 2-4-5 आदमी को भगवद गीता पहुंचाने का प्रयास करो, यही प्रचार ही सार है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारी आज्ञा होए गुरु हो तारो ये देश। ये चेतना महाप्रभु का आदेश सबके लिए कि जहाँ देखो जो मिले उसको कृष्ण का उपदेश करो। जो कुछ पूछे क्या चाहिए बोलो हरे कृष्णा, कहाँ जाओगे बोलो हरे कृष्णा, क्या खाओगे बोलो हरे कृष्णा, कुछ मत करो अपने आप सब होता रहेगा। चेतना महाप्रभु ऐसे करते थे। सची माता कहती क्या खाओगे बोले हरे कृष्ण बोलो, बोला गंगा स्नान करे बोलो हरे कृष्ण हरे राम बोलो, बोलो हरे राम हरे कृष्ण, हर काम हरे कृष्ण बोलो और कुछ नहीं। इसी को कृष्ण भावना कहते हैं। तो प्रचार ही सारे का मतलब रोज कम से कम कुछ लोगों को कृष्ण का उपदेश और संदेश पहुंचाओ, चाहे पुस्तक के रूप में, चाहे सत्संग के रूप में, चाहे प्रसाद के रूप में, चाहे फोटो के रूप में, प्रचार करो। दिन कोई बेकार नहीं जाना चाहिए। और अच्छा प्रश्न है, किस चीज का प्रमाण होता है तब उस चीज को लेना चाहिए मार्केट में। प्रमाण का मतलब है, गीता तो कई सालों से नहीं है मेरे ख्याल में भारतवर्ष में, गीता को सब लोग जानते हैं, सबों के घरों में, सबके घर में एक न एक प्रति गीता की होगी, ऐसा कोई घर नहीं हो जिसमें गीता न हो। लेकिन इतने सारे गीताएं घरों में होने के बाद भी कोई एक आदमी कृष्ण भक्त नहीं बना है, नहीं बना है। और फिर कृष्ण गीता आपको जो मिल रही है वो सिर्फ हिंदुओं के घरों में ही मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही। लेकिन इस गीता के द्वारा हमने एक प्रयोग किया है बहुत बड़ा, प्रभुपाद जी गीता के द्वारा हमने हिंदू संस्कृति से बाहर मानव जाति के अंदर इस पुस्तक के द्वारा लोगों को कृष्ण भक्ति के आंदोलन में शामिल किया है, मिलाया है। तो इसका गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ईश्वर सर्वभूतानाम, मैं सब प्राणियों का मालिक हूँ, उसको प्रमाणित इस गीता ने करके दिखाया है। प्रभुपाद की गीता के द्वारा ये प्रमाणित हुआ है कि कृष्ण सबके हृदय में सबका मालिक है, इसलिए पूरी दुनिया ने कृष्ण को अपने मालिक के रूप में स्वीकार किया है, परम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। ये इस भगवद गीता के बाद, इससे पहले भारत में चंद साधु महात्मा हो सकता है गीता का पाठ करते हो, किसी के मरने के पीछे कोई पंडित जी गीता का पाठ करता हो, लेकिन गीता के अनुसार पंडित जी भी नहीं चलता था। तो इसलिए इस गीता का विशेषता ये है कि इस गीता में कृष्ण भगवान ने जो शब्द कहे हैं उन शब्दों की सार्थकता विश्व भर में इस गीता के द्वारा, प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा आज देखने को आपको मिलती है। इस गीता का प्रमाण ये है कि आज रशिया के 40 शहरों के अंदर राधा कृष्ण के मंदिर है और वहाँ भगवद गीता को लोग पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर और चाइना के अंदर इस गीता की प्रतियाँ लोग, उस देश के लोग कृष्ण को भगवान मान स्वीकार कर रहे हैं। ये गीता का संदेश है जो भारतवासी इससे पहले समझ नहीं सके थे। ये इस गीता की विशेषता है कि इस गीता में कृष्ण के संदेश को लोगों ने स्वीकार किया है, जबकि दूसरी गीताओं में अपने घरों तक पढ़ी है और मरने के बाद पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसलिए ये गीता विशेष है कि इससे कृष्ण के संदेश को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। ये विशेषता है इसकी। और फिर उससे ज़्यादा विशेषता ये है कि भगवान कहते हैं कि मेरे को केवल भक्त ही जान सकता है, तो मेरी गीता को भी केवल भक्त ही जान सकता है। तो अन्य गीताओं को लिखने वाले कृष्ण भक्त नहीं हैं, बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, संस्कृत के में PhD हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त नहीं थे, इसलिए उसके अंदर कृष्ण का भाव नहीं आया है, उनकी विद्वता आ गई है। और यहाँ प्रभुपाद जी कोई बड़ा विद्वान नहीं है, केवल अब कृष्ण भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास है। तो उनकी भगवद गीता एक भक्त की भगवद गीता है, जैसे ये तो भगवान साफ कह रहे हैं कि अर्जुन तुम भक्त हो, इसलिए मैं तेरे को गीता का रहस्य तुमको समझ में आएगा। भक्तोसी मे सखा चेति रहस्यम आई तद उत्तमम, तुम गीता के उत्तम रहस्य को समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो गीता के रहस्य को केवल भक्त समझ सकता है। और गीता का रहस्य क्या है कि गीता सारी दुनिया के लिए है। प्रभुपाद को किसी ने कभी पूछा था कि आप पक्षपात, आप कैसे समदृशी हैं? बोला मैं समदृशी इस बात में हूँ कि मैंने गीता पूरी दुनिया को दी है, कि मैंने सबको गीता बराबर रूप में दी है। ऐसे नहीं कहा कि केवल ब्राह्मणों को अथवा भारतवासियों को गीता, मैं पूरी दुनिया के लिए, ये मेरी समदृष्टता है कि गीता भगवान ने सबके लिए दी है और मैंने उसको सब जगह पहुँचाने का प्रयास किया है, बगैर पक्षपात के, बगैर भेदभाव के। ये मेरा जो है समभाव है कि मैंने सबको गीता का अधिकारी मानकर उनको दे दी है, मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया। तो ये विशेषता है कि गीता के रहस्य को केवल भक्त समझ सकता है। और प्रभुपाद अपने आप को एक भक्त परंपरा में भक्त कहते हैं, न अपने आप को विद्वान कहते हैं, न अपने आप को कोई बड़ा शास्त्री वाला मानते हैं, तो केवल एक भक्त हैं। और भक्त के मुख से भगवद गीता सुनने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, आप इसका अभ्यास करके देख लो। और हमने लाखों लोगों के ऊपर ये प्रयोग किया है और ये सफल प्रयोग पाश्चात्य देश में हो चुका है, तो आप भारतवासी इसका अनुभव करके देखो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और किसी का कोई प्रश्न? अभी 1 घंटे में 8 मिनट है।
काफी भक्तों का प्रश्न है कि कृष्ण भावना को दाप हमको सिखा रहे हो, अलग चीज है, लेकिन हम सालों से और परंपरा से दूसरे देवी देवताओं की पूजा और विधि करते आ रहे हैं, तो हम उससे किस प्रकार छूट सके?
वो बहुत आसान सा काम है। लड़की जब माँ बाप के घर में होती है तो माँ बाप की सेवा करती है, पोछा करती है, झाड़ू करती है, बर्तन धोती है, रोटी पकाती है। जब पति की शादी हो जाती है तो पति का माता पिता का घर छोड़ के चली जाती है पति की सेवा करने। कोई माता पिता झगड़ा करते हैं क्या? झगड़ा करते हैं? साल में एक आध बार आती है शादी मुरादी में, आएगी, खाएगी, पिएगी, चली जाएगी बस। तो ऐसे पहले तुमको पता नहीं था तो तुम देवी देवता की पूजा कर रहे हो, अभी तुम्हारी शादी हो गई है, तुमको कृष्ण पति रूप में मिला है तो उसकी सेवा करो, उनको छोड़ दो, कोई नाराज नहीं होंगे। उनका दिन आए शिवरात्रि होते चले जाना, थोड़ा दिखा के आ जाना, भोज भगन भोज भगन रोज रोज जाने रोज रोज जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल सी बात है। तो इस दुनिया में ऐसे होता है, इस दुनिया में भी ऐसे हो रहा है ना, बच्ची को पहले पता नहीं होता, वो समझते मेरा घर यही है, लेकिन जब समझदार होती तो बोलती है मेरा घर नहीं है, मेरे को दूसरे कहीं जाना है। तो ऐसे ही तो इस दुनिया में ठीक है, जो परंपराओं में हम देवी देवता कर रहे थे हमको समझ नहीं थी, आज मेरे को समझ आ गई है शास्त्र से, तो वो नाराज थोड़ी होंगे, वो तो उनकी कृपा है कि वो देवी की पूजा कर रहे थे इसलिए तुमको भगवान की पूजा मिली है, और नाराज नहीं हो जाएंगी, वो बड़ी खुश हो जाएंगी। और कभी कोई विशेष उनका दिन हो तब उनको सम्मान देना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए देवी देवता का, लेकिन भगवान के भक्ति करने के बाद किसी और की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। वो कहते कमा के लाओ, यही कहेंगे हर बार, कहेंगे कमा के लाओ, सीधी सी बात है, इतने दिन तुम्हारे को बड़ा किया, खिलाया पिलाया, अब तुम हमको खिलाओ पिलाओ, यही कहेंगे सीधे।
माँ बाप को भी उसी का एक का सहारा होता है, उसको बहुत प्रचार करना है, लेकिन घर में से अगर ऐसी पोजीशन हो किसी को,
ये आज से नहीं, ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है, पहले भी ऐसे था। प्रहलाद भक्ति करना चाहता था, हिरण्यकश्यप ने मना किया, ये पुराना इतिहास है, हम पहले से होता आ रहा है, नई बात नहीं है। बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि एक, हम मैं अभी कहाँ बहरीन में था, उसका बेटा मुझे बोला ये कोई सन्यासी बने, मेरी इच्छा है, मेरा इच्छा है कि ये सन्यासी बने। इसको मैं साथ लाया गाड़ी में, मैंने पत्नी को उतारा, फिर इसको कहा ले गए आगे आगे दिखाने के लिए, क्यों पर इसको मैंने दिखाया, देखो तुम संसार में जाओगे ना तो पहले पत्नी को उतार के फिर गाड़ी पार्क करने तुमको जाना, वहाँ से तुमको पैदल आना पड़ेगा, तो ये सब परेशानी उठानी हो तो इस इधर जाना, नहीं तो सन्यासी बन जाना। वो अपने बच्चे को सिखा रहा था। एक ऐसी माता मैं जानता हूँ जिसने कहा कि मेरा बेटा, उस वक्त वो आर्मी में था, मुझे बोला ये आर्मी से तो भाग के आया है कहीं, इसको आप मंदिर में रख लो थोड़े दिन, फिर वहाँ से जब बिल्कुल छूट जाएगा मैं चाहती हूँ कि ये ब्रह्मचारी बने। एक माँ है उसने कहा मेरा बच्चा साधु बने। तो कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो चाहते हैं कि हमने दुनिया में बहुत कष्ट भोगा है, इस दुनिया को हमने अच्छी तरह देखा है कि बहुत परेशानी है, हम नहीं चाहते हैं कि ये परेशानी हमारे बच्चे देखें। इसको बोलता है जिसको ज्ञान हो गया है वो ऐसे सोचेगा, जो अज्ञान में है वो सोचेगा जो तकलीफें हमने भोगी है वो हमारे बच्चों को अच्छी तरह से भोगनी चाहिए, हमने जो जो लातें खाई है वो इनको भी खानी चाहिए। सीधा सा बिल्कुल साफ नजर आता है। हमने, हम बड़े हुए, हमारे पिता ने हमारी शादी की, हमारे हमारे पिता के घर को लात मार दी, हमने अपना घर बनाया, अब मेरा बेटा शादी करेगा फिर मेरे को लात मारेगा, ये अपना घर बनाएगा, बस ऐसे चलता रहेगा। ये परंपरा हमारी भी चलनी चाहिए, उनको भी अपनी परंपरा चलाने का बहुत शौक है। और ये बड़ा आश्चर्य है, इसको इसको माया और अज्ञान कहते हैं। वो जानता है पिता, बच्चा बेटा तुम कमाओ, थोड़ा कमाओगे तेरी शादी कराऊंगे, उसको मालूम है शादी कराएगा तुमने कमाए होंगे 20,000 और घर से वो 2,00,000 और खर्चा करेगा, और फिर तुम उसको लात के मार के चले जाओगे और फिर वो रोएगा कि 2,00,000 भी लेके गया। ये इस दुनिया में देखा जा, सीधा साफ नजर आ रहा है, फिर भी वही करेंगे। इसलिए 99% तो ये काम नहीं कर सकते, केवल 1-2% मुश्किल से। सहस्राणाम कश्चित यतति सिद्धेयताम पिसिद्धानाम कश्चन माम वेति तत्वता, मनुष्याणाम से हजारों में से कोई एक होता है जो कम से कम कथा में, कीर्तन में, सत्संग में, कृष्ण भावना में आता है, और हजारों जो ऐसे कृष्ण भावना में आते हैं उनमें से कोई एक होता है जो ये काम संभाल सकता है। तो ये काम सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं ये काम, इस काम के लिए भी कुछ गिने चुने लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। पूरे भारत के अंदर कितनी बड़ी संख्या है, 170 साल का प्रभुपाद निकला जिसने पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा आंदोलन स्थापित किया। तो ये ऐसे कोई 1-2 निकलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकलते। इसलिए कुछ लोग बेचारे परेशान होते हैं घर में, तो जैसे वो कहते हैं फिर गधा मजदूरी में शुरू हो जाते हैं, फिर जब थकते हैं तब देखेंगे, फिर भी भक्ति करेगा तो उसको फिर भी लाभ है, कोई नुकसान नहीं। लेकिन कोई 1-2 ऐसे शेर निकल आते हैं तो बड़े भाग की बात है, क्यों अभी तक आप फंसे नहीं हो तो बच सकते हो, जो फंस गए हैं वो तो छूट गए। आप में से कोई इतने बैठे, मैं वही तो कह, मैं 10 तो मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, 2-4 निकले तो बहुत बड़ी बात है। उस स्तर के लिए निकलने वाले के लिए भगवान की कृपा चाहिए, वैष्णव कृपा चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। आप इच्छा करोगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे, आपकी इच्छा होगी तो भगवान आपके माता पिता के हृदय में भी परमात्मा के रूप में उनको भी प्रेरणा देंगे, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, आप बहाना माता पिता का बनाना है तो फिर काम नहीं चलेगा। ज़्यादातर इच्छा हमारी होती है, बहाना हम दूसरे का बनाते हैं। हमारी इच्छा और दृढ़ संकल्प होगा तो भगवान परमात्मा के रूप में उनके हृदय में भी उनको कहेगा जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो, लेकिन हमारी इच्छा और दृढ़ संकल्प होना चाहिए तब ये हो। हमारी इच्छा नहीं होती है तब हम दूसरे को कहते हैं शायद उसकी वजह से नहीं हो रहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा इसको बोलते हैं। मुश्किल काम है ये, भगवान की भक्ति इतना सरल नहीं जितना समझना चाहिए, इसमें बहुत, कौन सबसे दुनिया में सबसे उच्च कोटि के भगवान के भक्त कौन है, पहली श्रेणी में कौन से भगवान के भक्त आते हैं, गोपियाँ, गोपियाँ। और गोपी गीत में क्या लिखा है, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पुत्र छोड़ा, संतान छोड़ा, पति छोड़ा, ये कह रही है, खुद बोलती हैं, सब छोड़ के तुम्हारे पास आई। अब बहुत मुश्किल काम है, इसे मतलब ये कोई साधारण काम नहीं है, भगवान को भक्ति करना ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, बहुत विलक्षण है और कुछ ही लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन हरे कृष्णा जबकि अपना सफल जीवन बहुत से सफल, सभी सफल कर सकते हो, एक आदमी का जीवन सफल करना बहुत आसान है, लेकिन उद्धार करना दूसरों का ये मुश्किल है। आप जो हम जो आपको बता रहे हैं उन लोगों के बता लिए बता रहे हैं जो संसार में दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे, आध्यात्मिक नेता बनेंगे, आध्यात्मिक गुरुजन बनेंगे, उनकी बात कर रहे हैं। साधारण आप हरे कृष्णा जपोगे, अपने घर में रहो, दुकान चलाओ, तो अपना पेट गुजर करो, शादी करो, तो ठीक है, अपना जन्म जन्म सफल हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। प्रायः यही प्रचार हम सबके लिए करते हैं कि ये काम करो। लेकिन आप जैसे नौजवान हैं तो हम चाहते हैं कोई एक दो चार ऐसे हो सकता है पूर्व संस्कार ऐसे हो कि निकल आए जो इस काम को आगे बढ़ाए। हम लग सब तो आज नहीं तो कल इस संसार से चले जाएंगे, तो किसी और को ये काम तो संभालना पड़ेगा, तो कुछ तो निकलना ही चाहिए ना ऐसे। तो एक दो चार पाँच निकलेंगे, सब नहीं निकलेंगे, लेकिन कोई ऐसे वीर पुरुष होने चाहिए जिसके ऊपर अपने इंद्रियों को संयम करने की हिम्मत हो, तो भगवान और माता पिता और सब सहयोग अपने आप कर लेंगे। अपने प्रचार के लिए कोई परेशानी, आपके अपने उद्धार के लिए चाहिए 16 माला जपो, चार नियम का पालन करो, प्रसाद खाओ, सुखी रहो, बस। लेकिन प्रचार का कार्य करना और इसको प्रोफेशन के रूप में लेना है तो फिर थोड़ा दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। लेकिन वो कृष्ण को बहुत प्रिय है, वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु आए ही थे निज वैराग विद्या भक्ति योग सिखाने के लिए। निज वैराग विद्या किसको जाके वैराग विद्या सिखाई? दो बहुत बड़े मंत्री थे नवाब हुसैन शाह के, उनको कहा चलो वृंदावन में पेड़ों के नीचे रहो, राजमहल छोड़ के पेड़ों के नीचे रहना शुरू करो। रघुनाथ दास गोस्वामी 12 लाख रुपये से ज़्यादा सोने के मुद्राएं जिसके पिताजी के और चाचा के एक ही बेटा था अतिथि, छोड़ के जाके छाछ पियो और वृंदावन में बैठो भजन करो। तो ये विशेष लोगों के लिए महाप्रभु के आंदोलन में प्रचार का दायित्व, तो कुछ विशेष लोगों के लिए। बाकी सबके उद्धार के लिए तो 16 माला जपो, प्रसाद खाओ, चार नियम पालन करो, आप लोग ये कर रहे हो बहुत अच्छा है। लेकिन हम जो प्रचार कह रहे थे कुछ लोग ऐसे निकलो कि ये प्रचार बहुत आगे बढ़ना चाहिए। खा के पी के कई बार हमारे दादा परदादा सब मर गए, ऐसे जैसे नहीं हम सारी उम्र यहाँ रह जाएंगे, कि जो वो चाह रहे हैं माता पिता वो करने से कि सारी उम्र रहोगे क्या? हमने कल पूछा था सत्संग में वहाँ राधेश के वहाँ, हमने बोला आप सब लोगों को ये मालूम है कि एक दिन मरना है? बोला हाँ। 2010 से आप यहाँ जितने बैठे हो 2090 तक कितने रहेंगे आप में से? हाँ, एक भी नहीं रहेगा ना। ये बच्चा कितने का, अभी कितना 12 साल का है? हाँ, 15 और 80 कितने हो गए? 95, नो गारंटी। तो 2090 भी आएगा ना, 1990 तो हमने देखा ना, तो 2090 भी आएगा, हम में से कोई भी नहीं रहेगा। जब हम जाएंगे तो कुछ ले जाएंगे क्या यहाँ से? कुछ ले भी नहीं जाएंगे ना। जब जाएंगे ये भी पक्का है मालूम, और ये भी मालूम है कुछ नहीं ले जाएंगे, तो फिर झमे लगाए के लिए करें, फिर इतना सारा परेशानी करें क्यों? जब जाना ही पड़ेगा और जब कुछ ले भी नहीं जा सकेंगे तो फिर ये मुसीबत पाल क्यों रहे? ये सब करने की जरूरत? ये वही लोग जो ये दो प्रश्न ठीक तरह जानते हैं कि मैं जाऊंगा और कुछ भी नहीं ले जा सकता, इसलिए सिर्फ ले जा सकता हूं भगवान का नाम, इसलिए ये नाम ले लूं और दूसरों को भी ये शिक्षा दे दूं। तो जिसको ये बात के ऊपर विश्वास है वो ये काम करने के लिए हिम्मत कर सकता है। लेकिन अभी तक नहीं नया, तो जितने साल रहेंगे उतने साल तो खाएंगे पिएंगे, वो तो सभी खाएंगे पिएंगे, कोई नहीं बचेगा। हमने आपको बोला हम आपसे ज़्यादा खाते हैं पीते हैं, बहुत मिलता भी ज़्यादा है, खाने पीने का भी कोई कमी नहीं है। भगवान के मंदिर में भगवान को राजभोग मिलता है, वो तो 56 व्यंजन बनते हैं, वही बाहर आते हैं, वही प्रसाद मिलता है भक्तों को, कोई कमी नहीं है। वो कोई बड़ा राजा महाराजा के घर में भी इतना नहीं बनता होगा, भक्तों के लिए तो सब सुविधा है, भगवान के भक्त बनने से कोई कमी नहीं है। ये काम कुछ लोग कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। अपना उद्धार तो हर एक लोग कर सकता है, लेकिन दूसरों का उद्धार करने वाला काम सब लोग नहीं कर सकते। लेकिन आप में से कोई भाग्यशाली ये काम करने के लिए आगे बढ़े तो अच्छा है, नहीं तो माता पिता को परेशान मत करो, कमाओ खाओ लेकिन 16 माला जपते रहो। हरे कृष्ण।
जो हमारे भक्ति के विरोधी हो जरा सर ऐसा सोचते हैं कि जब हम युवा हैं, हमारे शिक्षण हम कर रहे हैं, एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, तो हमारा जब हम शिक्षण ले रहे हैं तो शिक्षण ही हमारा कर्तव्य है और कोई बात हमें भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ शिक्षण ही लेना चाहिए, तो ये क्या बात सही है?
हाँ, ब्रह्मचारी जब है तो उसको केवल पढ़ना ही चाहिए, लेकिन पढ़ने में ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म जो ब्रह्म के विषय में आचरण करे। तो आपकी पढ़ाई में केवल भौतिकता की शिक्षा है, और आप भौतिक नहीं हो, आप आत्मा और शरीर दो चीज़ों के बने हुए हो, और आधुनिक शिक्षा केवल शरीर के विषय की शिक्षा है, इसलिए आपको आध्यात्मिक शिक्षा के लिए कहीं और पढ़ाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी भक्ति 2 घंटे रोज़ करो और बाकी अपनी जो शिक्षा है उसको पूर्ण करो, क्योंकि आप 2 चीज़ों के बने हुए हो। शरीर आपका बना हुआ है प्रकृति का भौतिक, इसलिए भौतिक शिक्षा जरूरी है इस शरीर को चलाने के लिए, लेकिन आप तो हो दूसरा, आपका अस्तित्व है आत्मा, उसकी शिक्षा कहीं मिलती नहीं है, वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे तो अधूरी शिक्षा हो जाएगी, इसलिए ये शिक्षा भक्ति की हर एक व्यक्ति के लिए रोज़ 2 घंटा जरूरी है कम से कम, ताकि वो पूर्ण जीवन उसका पूर्ण हो, नहीं तो अधूरा जीवन हो जाएगा, वो शिक्षा अधूरी है, उसमें आपको शांति नहीं है, उसमें आपको भाव नहीं पैदा होंगे, वो शिक्षा आपको माता पिता की सेवा करना नहीं सिखाएगी, वो शिक्षा आपको बड़ों का आदर करना नहीं सिखाएगी। ये भगवद गीता में लिखा है, बड़ों का आदर करना, भगवान की पूजा करना, माता पिता की सेवा करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, सफाई रखना, स्वच्छ रखना, ये भगवद गीता के श्लोक है। ये नहीं सीखोगे तो समाज के अंदर सिर्फ पढ़े और किसी काम के तो नहीं रहे, माता पिता को भी छोड़ दिया और अमेरिका चले गए और गोरी के साथ शादी किया तो किसी काम की तुम्हारी पढ़ाई, ये आधे गुजरात वहाँ बैठी है, वहाँ क्या कर रही हो, ठेले के ऊपर वहाँ केले बेच रही है, तो फायदा क्या फायदा क्या उसकी पढ़ाई का, ठेले के ऊपर केला बेच रही है और काम तो वही कर रही है, फायदा क्या, हम अमेरिका में रहे तो फिर क्या हुआ, तुम माता पिता तुम्हारे यहाँ मर रहे, कोई उसको पानी पिलाने वाला नहीं, तो तुमने 1,00,000 कमाए बाहर रहे तो क्या फर्क क्या पड़ा। तो ये शिक्षा क्योंकि उन केवल भौतिक शिक्षा ली है इसलिए वो अधूरे हैं, इसलिए वो कोई भी समाज का अच्छा कार्य नहीं कर पाए, केवल अपने शरीर के लिए सुख के लिए ही भोग में लगे हुए। तो ये शिक्षा फिर भी जरूरी है सबके लिए, ताकि उसके अंदर और संस्कार आने चाहिए। आजकल की शिक्षा में संस्कार नहीं है, आध्यात्मिक शिक्षा संस्कार सिखाती। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।